हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रानी माँ ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई थी और जल्दी ही उसने तारापरी को वो फल दे दिया था। फल खाने से पहले तारापरी ने सबसे अच्छे से मिली थी और एक आखिरी बार उस राक्षस के कक्ष में गई थी और वहाँ जाकर उसने उसे कहना शुरू कर दिया था। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने का और मुझे तड़पाने का और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लेकर जाने का। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो हे राक्षस, ठीक 4 महीने के बाद मैं वापस आऊँगी और इस बार तुम्हें तुम्हें ख़त्म करने का हथियार अपने साथ लेकर आऊँगी और तुम्हारा नामो निशान मैं इस दुनिया से मिटा दूँगी। तुम देखना, मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगी। अब तुम तारा को कभी भी नहीं पा पाओगे। ऐसा कहकर तारापरी रानी माँ से विदा लेके और बाकी की परियों से विदा लेकर वो फल खाने लगी थी और वो फल खाने के बाद अचानक से ही तारापरी का जिस्म वहाँ से गायब होने लगा था। वहीं दूसरी ओर दादा महाराज तारापरी के बच्चे को उस नीले आकार में लेकर बैठे हुए थे और जैसे ही सोनल परी ने ये देखा वो चौंक गई थी और कहने लगी थी, दादा महाराज ये क्या है, ये किसका बच्चा है और ये आप कहाँ से लेकर आए हैं? क्योंकि सोनल परी उस वक्त बगीचे में ही रह रही थी और दादा महाराज के सामने जो फूल थे उन्हीं में वो विराजमान थी। तो जैसे ही सोनल परी ने दादा महाराज के हाथों में बच्चा देखा वो चौंक कर सवाल करने लगी थी। तभी दादा महाराज ने सोनल परी की ओर देखते हुए कहा था, ये जिन्नातों का वंशज है क्या? जैसे ही सोनल परी ने ये सुना वो पूरी तरह से चौंक गई थी। तभी दादा महाराज ने जिन्नातों के वंशज को सोनल परी की ओर देते हुए कहा था, तुम्हें इसे लेकर गायब होना होगा क्योंकि अभी कुछ ही देर में जिन महाराज अमन यहाँ आने वाले हैं और अगर ये बच्चा और तुम यहाँ रही तो जिन्नातों की और परी की खुशबू से वो तुम लोगों को पहचान जाएंगे और सारा सच उनके सामने आ जाएगा और मैं चाहकर भी तुम लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। और हाँ, याद रखना, तुम्हें दूसरे पहर ही यहाँ वापस लौट कर आना होगा क्योंकि तारापरी किसी भी पल यहाँ बगीचे में आ सकती है। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा सोनल परी को सब कुछ समझ में आ गया था और जल्दी ही उस बच्चे को लेकर वो गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर जिन महाराज अमन जल्दी ही बगीचे में पहुँच चुके थे और जैसे ही अमन ने बगीचे में ये अपने दादा महाराज को देखा तो अमरेंद्र जी के साथ साथ अमन भी भावुक हो उठा था और दादा महाराज को उन्होंने आगे बढ़कर दादा महाराज के सामने अपना सर झुका लिया था। दादा महाराज अपने समाधि लिए हुए पेड़ पर ही बैठे हुए थे और उनकी ओर देखकर कहने लगे थे, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम लोग मेरे पास जरूर आओगे, अब ये बताओ क्या करना चाहते हो? जैसे ही दादा महाराज ने सीधे सीधे ये पूछा अमन हैरान हो गया था और सोचने लगा था कि आखिरकार दादा महाराज को सारी बातें पहले से ही क्यों पता चल जाती हैं। तभी करिश्मा जी ने आगे बढ़कर कहना शुरू कर दिया था, दादा महाराज आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, पिताजी महाराज आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि उन तीन दुष्ट जिन्नातों का पता लगा लिया है और उनके किए के मुताबिक उन्हें सजा भी दे दी है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है जो बचा हुआ है और इसीलिए अमन आपसे जिन्नातों की दावत करने की इजाज़त मांगने के लिए आया है, तो क्या आप उस दावत में आएंगे? जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा दादा महाराज हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले थे, बिल्कुल ठीक सोचा है जिन महाराज अमन, जिन्नातों की दावत होनी ही चाहिए। उतना ही नहीं, जिन्नातों की दावत वाले दिन ही जिन महाराज अमन अपनी पत्नी तारा से भी मिलेंगे। क्या जैसे ही अमन ने ये सुना उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और तारा को लेकर जो उसके मन में डर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो अच्छी तरह से जानता था अगर उसके दादा महाराज कह रहे थे कि जिन्नातों की दावत के दिन उसकी पत्नी तारा उसे मिल जाएगी तो मतलब तारा उसे मिल जाएगी। अब तो अमन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, इसीलिए अब अमन ने खुशी से एक बार फिर दादा महाराज की ओर झुक गया था। तभी दादा महाराज ने अमन से कहा था कि तुम सबके सब आज ही पुरानी हवेली की ओर रवाना हो जाओ और वहाँ जाकर दावत की तैयारी करो और हाँ, तब तक हम सातों जादुई बावर्ची के आने का आह्वान कर देते हैं। सातों जादुई बावर्ची जिन्नातों की दावत की तैयारी करने के लिए वो जल्दी ही हवेली पहुँच जाएंगे। जैसे ही दादा महाराज ने ये कहा अमन मन ही मन में सोचने लगा था, मुझे भी बस उन्हीं के आने का इंतज़ार है। वो वहीं दूसरी ओर सोनल परी जो कि जिन्नातों के वंशज को लेकर गायब हो चुकी थी अचानक से उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। तभी उसे पहला ख्याल अगर किसी का आया था तो वो था अक्षत खुराना। इसीलिए सोनल परी ने जिन्नातों के वंशज को अपनी जादुई शक्ति के द्वारा बड़े ही छोटे से आकार में कर अपने गले में एक लॉकेट की तरह पहन लिया था और एक नॉर्मल लड़की का वेश लेकर वो अक्षत से मिलने के लिए उसके घर पर जा पहुंची थी, क्योंकि जब तक तारा पृथ्वी लोक नहीं आती उन्हें जिन्नातों के वंशज को संभाल कर और छुपा कर रखना था, क्योंकि कितनी ही काली शक्तियां थी जो कि जिन्नातों के वंशज के पीछे थी। अगर किसी को कानों कान इस बात की खबर लग गई कि जिन्नातों का वंशज अपनी माँ के पेट से बाहर है तो उस पर हमला होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। वेल, जैसे ही सोनल परी अक्षत खुराना से मिलने के लिए एक नॉर्मल सी लड़की का वेश लेकर आई, तब अक्षत खुराना ने उसे वेट करने के लिए कह दिया था, क्योंकि अक्षत खुराना बिल्कुल ठीक हो चुका था। नॉर्मली वो काफी सारे लोगों से हर रोज मिलकर उनकी मदद किया करता था, और जैसे ही अक्षत की माँ मिसेस खुराना ने आज अपने बेटे को बिल्कुल ठीक देखा तो उनके चेहरे पर भी जो परेशानी के भाव इतने दिनों से थे वो खत्म हो चुके थे, क्योंकि उनका बेटा पहले की तरह पोलाइट और सबकी रिस्पेक्ट करने वाला हो गया था। वेल, जैसे ही सोनल परी वहां गई किसी अदर नॉर्मल मामूली लड़की का वेश लेकर और उसने अक्षत को देखा तो वो उसे देखते रह गई थी, क्योंकि अक्षत उस वक्त बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। सोनल कितने ही देर तक उसे निहारती रही थी और उसका दिल जोरों से धड़क धक धक होने लगा था। सोनल काफी ज्यादा हैरत में थी कि उसका दिल ऐसे क्यों हो रहा है और क्यों बार बार इस इंसान की ओर खींचा चला जा रहा था, और वो यहाँ आई ही क्यों, वो कहीं और भी तो जाकर छिप सकती थी। सोनल परी को खुद की ये बात समझ नहीं आ रही थी, हालांकि वो मोहब्बत या इन सब बातों पर बहुत ही कम यकीन किया करती थी, लेकिन अब सब कुछ उसकी आंखों के सामने था तो वो इस तरह से उसे अवॉइड भी नहीं कर सकती थी। वहीं अक्षत ने जैसे ही एक बड़ी ही खूबसूरत सी लड़की को अपने सामने देखा तो वो हैरान हो गए और कहने लगा था, जी आप कौन हैं और किससे मिलना है को? तब सोनल उसकी ओर बड़ी ही ध्यान से देखने लगी थी कि पूरी रात उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था और पूरी रात एक बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़कर सोया रहा था, और सुबह उठ करके पूछते हैं कि वो कौन थी। तब सोनल परी अक्षत की बात बात सुनकर चिढ़कर रह गई थी और फिर अक्षत की ओर देखते हुए बोली थी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये जानने के लिए आई थी कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं? जैसे ही अचानक सोनल ने ये पूछा अक्षत पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगा था, मेरी तबीयत को भला क्या हुआ है और आप है कौन और इस तरह से जो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही हैं।
तभी सोनल परी झल्ला कर रह गई थी और सोचने लगी थी कि जरूर दानव इसके शरीर से बाहर निकालने के बाद ये सब कुछ भूल गए होंगे। तो ये सोचते हुए जल्दी से सोनल परी ने अपनी बात बदल दी थी और वो अक्षत की ओर देखकर कहने लगी थी, वो एक्चुअली मैं यहाँ आपके कंपनी से रिलेटेड इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मैं आपके ऑफिस भी गई थी लेकिन उन्होंने बताया कि अभी आप ऑफिस ही नहीं जा रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ घर चली गई। एक्चुअली सर, मुझे काम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या मुझे कोई जॉब मिल सकती है? जैसे ही अचानक काव्या ने अपनी बात बदली अक्षत उसे हैरानी से देखने लगा था और फिर उसकी ओर देखकर कहने लगा था, वो सब तो ठीक है लेकिन तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें ये कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है? तभी सोनल परी ने जल्दी से कोई बहाना बनाते हुए उसकी ओर देखते हुए कहा था, वो एक्चुअली आपकी आईज मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक सी लग रही थी तो मुझे लगा कि ज़रूर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होगी तो इसीलिए बस मैंने अंदाज़ा लगाया। जैसे ही अक्षत ने ये सुना वो जोरों से हंस पड़ा था और उसकी ओर देखकर कहने लगा था, अच्छा अच्छा ठीक है तुम एक काम करो, मुझे आज ठीक है 11 बजे मेरे ऑफिस में मिलो, मैं भी बस रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ऑफिस के काम मैं ऑफिस में करता हूँ, घर पर नहीं करता हूँ, और तुम घर पर आई तो इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर देना चाहूँगा। ऐसा कहकर उसने सोनल को वहाँ से जाने के लिए कह दिया और सोनल परी ने राहत की सांस ली थी और सोचने लगी थी, अगर वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, कैसे सीधे तरीके से आकर उसके हालचाल पूछ सकती है। तब जैसे ही सोनल परी वहाँ से जाने लगी तब अक्षत उसकी खुशबू को स्मेल करने लगा था। उसे वो खुशबू बड़ी ही जानी पहचानी सी लगी थी क्योंकि उस वक्त रात में उसका हाथ थाम रखा था, तब वो कुछ वही थी जो उसकी नाक से टकरा रही थी। और तब अक्षत को सोनल परी का धुंधला धुंधला सा चेहरा नजर आने लगा था और वो सोनल परी को रोकते हुए कहने लगा था, रुकिए, एक्चुअली मिस, पता नहीं क्यों आपको अपने करीब देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरी कोई अपनी हैं, आप में बड़ा ही अपनापन सा महसूस हो रहा है मुझे आपके अंदर से, आखिरकार ऐसी क्या बात है? जैसे ही अक्षत ने ये कहा सोनल परी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर जल्दी से बोली थी, सर जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ और जैसे कि आपने मुझे कहा कि 11 बजे अब मैं आपको आपके ऑफिस में मिलूंगी, अभी फिलहाल मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सोनल परी जल्दी ही वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि इस वक्त उसने यहाँ अक्षत के पास आकर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी। उसे इस तरह से अक्षत के पास नहीं आना चाहिए था क्योंकि सोनल परी इस वक्त अकेली नहीं थी बल्कि जिन्नातों का वंशज उसके साथ था, जो कि उसने अपने पास एक माला के रूप में पहन रखा था, वो भी अपनी जादुई शक्ति के द्वारा। सोनल परी को जल्द से जल्द तारा परी के आने का इंतजार था, क्योंकि वो बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती थी, और तारा परी ऑलरेडी परीलोक से गायब हो चुकी थी, और परीलोक से गायब होने के बाद वो सीधा कहीं और नहीं बल्कि बगीचे में ही जाने वाली थी। इसीलिए सोनल परी ने जल्दी से बगीचे में जाने का डिसीजन ले लिया था, और अक्षत के घर से निकलते ही सोनल परी ने क्राइम रिपोर्टर वाला रूप ले लिया था, और जैसे ही उसने इंसानी तरीके से रिक्शा ऑटो वगैरह का इस्तेमाल किया बगीचे जाने के लिए, लेकिन अचानक से उसकी एक जोरदार भयानक टक्कर हो गई थी और सोनल परी का एक बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था, और उसके गले से जिन्नातों के वंशज की जो माला उसने पहन रखी थी वो दूर जा गिरी थी। जैसे सोनल परी का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ, दादा महाराज को इस बात के बारे में पता चल चुका था और ये भी समझ चुके थे कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उस वक्त मल्लिका और अमित दोनों ही अमन के ऑफिस जाने वाले उसी रास्ते से गुजर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने इस तरह से सोनल परी का एक्सीडेंट होते हुए देखा तो तुरंत रुक गए थे, क्योंकि उन्होंने काव्या को पहचान लिया था। काव्या कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो कि अमन के ऑफिस में आई थी, तो इसीलिए मल्लिका ने जल्दी से उठाकर काव्या को देखा था। उसके माथे से खून निकल रहा था, लेकिन काव्या को माथे से भले ही खून निकल रहा हो, लेकिन उसका ध्यान पूरा का पूरा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने उस लॉकेट पर था जिसमें जिन्नातों का वंशज था। जल्दी ही मल्लिका ने काव्या को उठाने में हेल्प की थी और उसे कहने लगी थी, मिस काव्या, आप तो वही है ना जर्नलिस्ट जो अमन सर के ऑफिस में आई थी, आप यहाँ कैसे आई और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? काव्या भले ही मल्लिका की बात सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ उस लॉकेट को ढूंढ रही थी जिस लॉकेट में उसने जिन्नातों के वंशजों को कैद किया था, और तभी अचानक काव्या की सांसें थम सी गई थी, क्योंकि वो लॉकेट किसी और के हाथ में नहीं बल्कि काली शक्तियों के मालिक अमित के हाथों में था। अमित जैसे ही काव्या को उठाने के लिए आगे बढ़ा था, तब तक मल्लिका ने उसे उठा लिया था। उसके पैरों के नीचे कुछ चैन आया था और उसे लॉकेट को उठाकर अमित को कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि अमित का गला घुटन से भर गया हो और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, और जैसे ही काव्या ने अर्ध खुली आंखों में अमित के हाथों में लॉकेट देखा तो उसकी सांसें थम कर रह गई थी और वो जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ी थी। क्या जिन्नातों का वंशज अमित के हाथ लग जाएगा? क्या अमन मांस खाने वाले जादुई बावर्ची का पता लगा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।